हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मेहर ने अपनी डील के मुताबिक क्रिमिनल लॉयर आदित्य रॉय को अपने घर अपने ही कमरे में बुलाया। राजवीर की ही मौजूदगी में वो आदित्य के साथ अंतरंग होने लगी। राजवीर को ये सब बेहद दुखद लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। सारी गलती उसकी ही थी जिसकी उसे आज सजा मिल रही थी। उसकी इज्जत, उसकी पत्नी किसी और के साथ अपना मुंह काला कर रही थी और वो कुर्सी से बंधा हुआ बेबस होकर उन्हें देख रहा था। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर रखी थीं, लेकिन दोनों की मदहोश भरी आवाज़ें राजवीर के कानों में शीशा घोलने का काम कर रही थीं। दो घंटे बाद आदित्य रॉय ने मेहर को छोड़ा और अपनी दूसरी किश्त बड़े ही अच्छे से वसूल कर ली थी। मेहर ने भी उसका भली भांति साथ दिया था। आदित्य रॉय मेहर के माथे पर किस करके अपने कपड़े उठाए और एक नज़र बेबस राजवीर की ओर देखते हुए वहां से निकल गया। मेहर बड़े ही सुकून के साथ एक मुस्कान राजवीर को देती हुई बिना कपड़ों के उसी चादर में लिपटी हुई सो गई। राजवीर उसे न जाने कितनी देर तक ऐसे ही देखता रहा और कब उसकी आंखें भारी होकर बंद हो गईं उसे पता ही नहीं चला। दूसरी ओर अरमान जोया के शहर पहुंच गया। यहां आकर वो सबसे पहले अरहम से मिलने अस्पताल गया। कुछ देर अरहम को देखने के बाद बोला, जोया कहाँ है? अरमान के इस सवाल पर अरहम उसे घूर कर देखने लगा और शिकवा किए बिना नहीं रह पाया। भाई, ये क्या, आपका भाई यहाँ हॉस्पिटल में इतनी ज्यादा जख्मी हालत में लेटा पड़ा है और आपको केवल जोया की पड़ी है कि जोया कहाँ है? तो तुम क्या चाहते हो, मैं यहाँ आकर अपने उस भाई का हालचाल लूं जिसने मेरा फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझा? इतना ही नहीं, जोया से मिलने पर एक बार मुझे बताना तो दूर की बात, मुझे भनक तक नहीं लगने दी। देखो अरहम, तो अच्छी तरह से जानता है जोया मेरे लिए क्या है। जोया के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और एक और बात तू अपने जहन में अच्छी तरह से बैठा ले। जोया का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दे, क्योंकि अब उस पर, उसके जिस्म पर, उसकी सांसों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा यानी अरमान ठाकुर का हक है, समझा तू? अरहम अपने भाई को घूर कर देखने लगा, लेकिन अरहम उन लोगों में से था जो मौके का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानते थे। भाई, मेरी ये हालत देखने के बाद भी क्या आपको ये लगता है कि मैं अभी भी जोया के पीछे जाऊंगा? अरमान, तुम्हारी हालत से मतलब, तू कहना क्या चाहता है, मैं कुछ समझा नहीं। आपको क्या लगा, मेरा एक्सीडेंट हुआ है और इस वजह से मैं इस हॉस्पिटल में हूँ? हाँ, तुम्हारा एक्सीडेंट ही तो हुआ था। नहीं भाई, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि मुझे हमारी प्यारी मासूम सी जोया ने मारा था। उसने मुझे इतना मारा था कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। ये सुनते ही अरमान को बेहद शौक लगा। तुझे पता भी है तो क्या कह रहा है? हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ, जोया ने ही मेरी यह हालत की है। अरमान अरहम को ऊपर से लेके नीचे तक देखने लगा और फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगा। अरमान को यूं हंसता देख अरहम रोने सी सूरत बनाकर उसे देखने लगा। हाँ भाई, आप भी उड़ा लीजिए मेरा मजाक, लेकिन मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। जोया अब पहले जैसी नहीं है, वो बहुत ज्यादा बदल चुकी है। वो सीधी साधी जोया तो अब कहीं भी नहीं है, ये तो कोई चालबाज सी लड़की है। लेकिन भाई, वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है और हमारा बच्चा अब बड़ा हो गया है, उसका पेट भी अब साफ नजर आने लगा है। अरमान सांस थामकर जोया की बातें सुन रहा था और अपने दिल को सुकून पहुंचा रहा था। लेकिन भाई, आप यहाँ अचानक से कैसे आ गए जोया को ढूंढने के लिए, जबकि अब आपकी जिंदगी में वो अनुराधा जी आ गई हैं? फिर आप यहाँ क्यों, क्या हुआ, सब ठीक है ना? अरमान अरहम को घूरने लगा और अचानक उसने अरहम का गिरेबान पकड़ लिया। अच्छा, तो तू यहाँ बैठकर मेरी जासूसी करा रहा था, तुझे क्या लगा उस अनुराधा के लिए मैं जोया को छोड़ दूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं अरहम ठाकुर, बिल्कुल भी नहीं। और क्या, तेरे खबरियों ने तुझे ये नहीं बताया कि उस अनुराधा को मैंने उसकी असली जगह पहुंचा दिया है? भाई, मुझे तो लगा था शायद अब आप अनुराधा के साथ सेटल हो गए होंगे, तो फिर आपने उसे अब कहाँ भेज दिया है? अरमान ठाकुर अपनी हल्की हल्की मूछ पर हाथ फेरते हुए बोला, कब्र में। उसने मेरी जिंदगी में जोया की जगह लेने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने उसे कब्र में भेज दिया, समझा तू? और ये फालतू की बकवास बंद कर और बता, जोया कहाँ है, कैसी है और किस जगह रहती है? नहीं भाई, आप मेरी बात मानिए, आप मत जाइए उसके पास। वो लड़की अब बहुत बदल चुकी है। अगर आप उसके सामने गए तो वो पक्का जान ले लेगी आपकी। यही तो मैं चाहता हूँ। तुझे पता है मुझे डरी सहमी सी लड़कियाँ पसंद भी नहीं है, और वैसे भी उसे अरमान ठाकुर के साथ रहना है तो उसे स्ट्रांग तो बनना ही होगा। तू चल, जोया के पास लेकर चल। अभी मेरा रोम रोम उसे देखने के लिए तड़प रहा है, चल जल्दी। अरहम ने हाँ में सर हिला दिया और अरमान के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर अबीर मेंशन की ओर रवाना हो गया। अरहम ने अपनी माँ से मिलने वाली बात जानबूझकर अरमान के सामने नहीं की थी, क्योंकि वो जानता था अगर अरमान को उसकी माँ के बारे में पता चला तो पक्का हाहाकार मच जाएगा। ये सोचकर वो चुप रह गया। वो चाहता था कि गजाला जी के बारे में उसे खुद बखुद पता चले। ये सोचकर अरहम चुप रह गया। दूसरी ओर गजाला जी अबीर राठौड़ के मेंशन में चली गईं। अबीर मेंशन के सभी नौकर उन्हें जानते थे, इसलिए सब उन्हें झुककर सलाम करने लगे। गजाला जी अबीर मेंशन में बड़ी ही रौबदार एंट्री लेती हैं और जल्दी ही अबीर के हॉल में पहुंच जाती हैं। उन्होंने एक नौकर को हुक्म दिया, अबीर साहब को बुला कर लाओ। गजाला जी का रौब उनकी आवाज में साफ सुनाई दे रहा था। तभी उस नौकर ने डरते डरते कहा, मैडम अबीर साहब तो यहाँ नहीं हैं, वो बाहर गए हैं। ये सुनते ही गजाला गुस्से में लाल पीली हो गईं और बड़बड़ाने लगीं। आखिर ये लड़का समझता क्या है अपने आप को? इसे इतने सारे फोन किए, इसने एक भी कॉल का जवाब तक नहीं दिया, और अब जब मैं खुद यहाँ इससे मिलने आई हूँ तो ये लड़का यहाँ से भी गायब हो गया है। ऐसा कहते हुए वो दरवाजे से बाहर जाने लगीं, लेकिन तभी एक कमरे से उन्हें रिया निकलती हुई दिखाई देने लगी। रिया को अबीर के घर पर देखकर गजाला जी हैरान रह गईं। तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें अंदर किसने घुसने दिया? तभी रिया के पीछे पीछे अकरम भी वहाँ आ गया। गजाला जी अकरम को देखते हुए बोली, तुम भी यहाँ हो? आखिर तुम दोनों कौन हो और मेरे बेटे के घर पर उसकी गैर मौजूदगी में क्या कर रहे हो? इससे पहले कि रिया गजाला जी को कोई जवाब देती, एक नौकरानी वहाँ आ गई और रिया को देखकर बोलने लगी, मैडम आपने जो बिरयानी बनाने के लिए कहा था वो तैयार है, अगर आप कहें को क्या मैं खाना लगा दूँ? हाँ, तुम अभी थोड़ी देर में खाना लगा देना, और हाँ रायता भी बना लेना। ओके ओके। हाँ मैं सर हिलाती हुई वो नौकरानी वहाँ से चली गई। रिया के बेटे के घर में इतनी ठाट पाट देखकर गजाला जी अंदर से तप चुकी थीं और घूर कर रिया और अकरम को देखने लगीं। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या क्या कर रहे हो? आंटी हम लोग हॉस्पिटल में तो मिल ही चुके हैं। जैसा कि आपको पता है मेरा नाम अकरम है और ये मेरी बीवी है रिया, और हम अबीर जी के करीबी दोस्त हैं और कुछ दिनों से हम यहीं रहते हैं। गजाला जी अकरम और रिया पर गहरी नज़र डालते हुए बोली, ओ दोस्त, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है अबीर की जिंदगी में तो कोई भी दोस्त रिश्तेदार नहीं था, तो फिर तुम लोग कहाँ से आ गए? रिया बीच में बोल पड़ी, अब आंटी दोस्त बनने या जान पहचान होने में ज्यादा समय थोड़े ना लगता है, और हम आपके दूसरे बेटे अरहम के भी तो दोस्त हैं, आपको याद नहीं? हम अस्पताल उससे मिलने के लिए भी तो आए थे, क्या आपको याद नहीं आंटी?
गजाला जी हल्की फीकी मुस्कान के साथ बोली, नहीं नहीं मुझे याद है, बस आप लोगों को यहाँ देखकर थोड़ा सोच में पड़ गई थी। अच्छा, आप दोनों को तो पता होगा कि अबीर कहाँ है? हाँ आंटी, एक्चुअली अबीर जी अपनी किसी ज़रूरी ट्रिप पर गए हैं, वो जल्दी ही लौट आएंगे, और आप फ़िक्र न करें, हम उनके आते ही बता देंगे कि आप उनसे मिलने के लिए आई थीं। ओह अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम बता देना अबीर को और बोलना कि मुझे फ़ोन करे। और आंटी आप खाना खा कर जाइए ना, बिरयानी बनी है, आ जाइए। नहीं नहीं बेटा रहने दो, मुझे देर हो रही है और अरहम को देखने भी जाना है अस्पताल, और वैसे भी मुझे मुफ्त की खाने की आदत नहीं है, गजाला जी ने रिया को टोका। हाँ आप ठीक कह रही हैं, और वैसे भी आपने अपनी पूरी जिंदगी तो मुफ्त की खाने में ही बिता दी, अब चलो अच्छा है कम से कम आपको कुछ अक्ल तो आई। रिया की ये बात सुनकर गजाला जी का मुँह गुस्से में लाल सुर्ख हो गया और वो गुस्से से रिया की ओर देखने लगी। तभी अकरम उनके सामने जा खड़ा हुआ और रिया को झूठ मूठ डांटते हुए बोला, ये किया रिया तुमने, कितना मजाक करती हो, कब जाएगी तुम्हारी मजाक करने की आदत? गजाला जी अकरम की ओर देखकर बोली, लगता है तुम्हारी बीवी कुछ ज्यादा ही मजाक किया है, संभाल कर रखो उसे, वरना ऐसे मजाकों पर लोगों की जान तक चली जाती है, गजाला जी ने कोल्ड वॉइस में अकरम को धमकी दी। अकरम हल्का सा मुस्कुराकर उन्हें देखने लगा। गजाला जी अकरम और रिया पर एक एक गहरी नज़र डालती हुई दरवाजे से बाहर निकलने लगीं कि तभी मेन गेट पर अरहम को खड़ा देखकर वो चौंक गईं।